नमस्कार, गुड इवनिंग शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
तो चूंकि आज बहुत सारी खेल खबरें हैं हमारे पास, इसलिए हम ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। वहीं झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले 7 साल के नन्हे तैराक ईशांक सिंह ने समुद्री लहरों को मात देते हुए इतिहास रचा। और इसके अलावा हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर ये है कि ओडिशा में कल पहली इंजन इंडोर ओपन एथलेटिक्स और फॉल्ट वॉल्ट प्रतियोगिता शुरू होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं थॉमस कप से, क्योंकि भारत थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। डेनमार्क में प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को 3-0 से हराया। बात करने से पहले एक नजर आज के रोमांचक मैच पर।
सिंगल्स में स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी, जबकि डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी के शानदार प्रदर्शन से भारत ने 3-0 की अजेय बढ़त हासिल की। सबसे पहले लक्ष्य ने 2 मैच पॉइंट बचाते हुए विश्व के 6 नंबर के खिलाड़ी चो टीएन चेन को हराकर भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद सात्विक और चिराग की डबल जोड़ी ने चियो सियांग चिये और वांग ची लिन को हराकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इसके बाद जिम्मेदारी आयुष शेट्टी पर आ गई और इसने दूसरे सिंगल्स में मौजूदा ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियन लिन चुन यी को हराकर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। इस जीत से भारत का थॉमस कप में पदक भी पक्का हो गया है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
तो थॉमस कप में बैडमिंटन में जिस तरह से सेमीफाइनल में जगह बनाई, अब तक का प्रदर्शन रहा, आगे किस तरह की चुनौतियां मिलेंगी भारत को?
देखिए जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। जापान और फ्रांस के बीच में जो दूसरा मुकाबला होना है क्वार्टर फाइनल, उसके विजेता से भारतीय टीम को खेलना है। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो लक्ष्य सेन, क्योंकि उनके सामने चौ तियान चेन थे, दुनिया के नंबर 6 खिलाड़ी, लेकिन आप ये मत भूलिए कि हमारे लक्ष्य सेन भी दुनिया के नंबर 4 खिलाड़ी हैं। तो इनका अगर प्रदर्शन देखें, हेड टू हेड दिखने में जरूर 4-4 का था, लेकिन लक्ष्य जो है 2024 के बाद चौ से कभी हारे नहीं थे, तो इसलिए उनसे तो मुझे उम्मीद थी कि वो तो आराम से जीत ही जाएंगे। हालांकि पहला गेम वो हारे, दूसरे गेम में वो पिछड़ रहे थे 2-5 से, लेकिन उसके बाद एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी ताकत से खेले और विपक्षी की गलतियों का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। फिर उसके बाद आपका डबल्स का मुकाबला था सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो अपोनेंट जोड़ी थी वो भी बहुत तगड़ी जोड़ी थी, क्योंकि ताइवान की ताकत मानी जाती है डबल्स जोड़ी सियांग चे च्यू और ची लिन वांग। उनके साथ जो है ये एक ऐसा मुकाबला था जिसमें प्लेसमेंट पर भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, अपनी नर्व्स पर कंट्रोल करके रखा और सहजता के साथ इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया। और अब आई बारी तीसरे मुकाबले की, जो कि निर्णायक मुकाबला था। आयुष शेट्टी, जो कि भारतीय बैडमिंटन की नई सनसनी अगर इन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और इनके सामने थे लिन चुन यी। दरअसल भारतीय टीम प्रबंधन बहुत परेशानी में था ये सोचकर कि एक तो टॉप रैंक प्लेयर थे लिन चुन यी, उनके सामने आयुष शेट्टी को उतारा जाए या ना उतारा जाए, क्योंकि वो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन में के चैंपियन भी रहे और उन्होंने लक्ष्य सेन को भी हराया था वहाँ। उनके सामने आयुष को थोड़ा सा हल्का पता नहीं क्यों आका जा रहा था, थोड़ी सी दुविधा में थी भारतीय टीम। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, इस खिलाड़ी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस करके दिखाया है, कभी 7-11 से पिछड़ने के बाद जिस तरह से फोरहैंड शॉट्स लगाए डाउन द लाइन, जो जंप के साथ जो इनके शॉट्स थे, और कई बार तो विपक्षी की सर्विस पर भी इन्होंने तगड़े प्रहार किए, वो काबिले तारीफ थे। और लिन जुन जो थे वो बेस लाइन से उनके या तो शॉट बाहर जाते गए या साइड लाइन से बाहर जाते गए, इसका भी उन्हें बहुत फायदा मिला।
तो जो सेमीफाइनल होगा, क्या लगता है उसमें किसी तरह की चुनौतियां आएंगी इनके सामने?
देखो जी, इस मंच पर क्योंकि ये प्लेऑफ के मुकाबले हैं, सेमीफाइनल मुकाबले हैं, नॉकआउट के मुकाबले हैं, तो अब यहाँ तो चुनौतियां तो आएंगी ही, लेकिन अब इन चुनौतियों को जिस तरह से भारत ने क्वार्टर फाइनल में ताइपाई के खिलाफ जो साबित किया है खुद को और बेहतरीन प्रदर्शन किया और उन खिलाड़ियों की नौबत ही नहीं आई। अब आप देखिए जो अन्य चौथा और पांचवा मुकाबला खेलने वाले थे, चाहे वो HS प्रणय हो या फिर आपके श्रीकांत, किदांबी श्रीकांत हो, उनके बिना अगर आप जीतते हैं तो उसके मायने कुछ अलग होते हैं। तो मुझे लगता है जापान और फ्रांस के विजेता से जो भी मुकाबला होगा भारत का, वो भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। और काश अगर वो 4 साल पुराना इतिहास भारत दोहराने में कामयाब हो जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले।
बिल्कुल, उम्मीद करेंगे कि 2022 की तरह इस बार भी भारत चैंपियन बनकर सामने आए। अब IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने ताजा समाचार मिलने तक, अभी 14वां ओवर चल रहा है, 3 विकेट गिर चुके हैं और 124 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में राजस्थान रॉयल्स चौथे स्थान पर है जबकि दिल्ली कैपिटल्स 7वें स्थान पर है। तो काफी आत्मविश्वास से भरी टीम है दिल्ली के सामने और दिल्ली के पास अभी एक और मौका है कि वो जो चौथी हार से बच जाए लगातार।
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी मैं वस्तुस्थिति बता दूं कि पारी का 14वां ओवर चल रहा है और 124 रन पर 3 विकेट खो दिए हैं राजस्थान रॉयल्स ने। स्टार का आना बाकी कारगर साबित हुआ, यशस्वी का उन्होंने विकेट लिया। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो देखो रहता ही है कि भाई सामने मिचेल स्टार्क हैं, बेशक आपने पहली गेंद पर छक्का लगा दिया क्योंकि पहले छक्का लगाने का काम वैभव सूर्यवंशी किया करते थे और अब उसको अंजाम दिया यशस्वी जायसवाल ने, लेकिन वो फुल टॉस पर आउट हुए। इसी तरह से काइल जैमिसन को जो विकेट मिला वैभव सूर्यवंशी का, वो भी फुल टॉस पर आउट हुए। हालांकि ये फुल टॉस थोड़ी सी खतरनाक थी, लो फुल टॉस थी। और अभी थोड़ी देर पहले ही अक्षर पटेल ने ध्रुव जुरेल का विकेट चटकाया है जिन्होंने रियान पराग के साथ सेंचुरी पार्टनरशिप की है। तो लॉन्ग ऑन पर जो है वो टाइस्टन स्टब्स के हाथों लपक लिए गए। तो रियान पराग की आज की पारी की तारीफ की जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि इन्होंने जिस तरह गेंद को बिल्कुल मिडल करके खेले हैं, मिड विकेट पर शॉट खेले, लॉन्ग ऑन पर खेले, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इन्होंने कई शॉट्स खेले, वो काबिले तारीफ थे। और वहीं ध्रुव जुरेल जो हैं उन्होंने अपनी पारी को जमाया, सवारा और स्क्वेयर ऑफ द बाउंड्री ज्यादा शॉट खेले और दोनों ने मिलकर सेंचुरी पार्टनरशिप करके जो शुरुआती परेशानियां थी उससे अपनी टीम को उबार दिया।
बिल्कुल, तो दिल्ली कैपिटल्स के सामने लगातार चौथी हार से बचने की जो चुनौती थी, मुझे लग रहा है अब कहीं ना कहीं वो आसान होती नजर आ रही है क्योंकि वैभव और यशस्वी दोनों को इनके लिए आउट करना होगा, मतलब आउट करना चाहिए था और उन्होंने ये करके दिखाया है अभी।
जी हाँ बिल्कुल, 2 विकेट गिर चुके हैं इन दोनों के खिलाड़ियों के आउट होना और फिर उसके बाद 1 विकेट ध्रुव जुरेल का गिरना, तो ये दर्शाता है कि दिल्ली कैपिटल्स ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है। शुरुआत अच्छी की लेकिन जो सेंचुरी पार्टनरशिप ने मुश्किलें खड़ी की हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि लुंगी एंगड़ी जो है उनके पीछे इंजर्ड हो गए थे, मिचेल स्टार्क आए नहीं थे और बाकी जो तेज गेंदबाज थे वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जो आपने कहा ना कि जो लगातार हार पर हार, उसकी बड़ी वजह यही थी।
जी, और वहीं अगर हम कल के मैच की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराया अहमदाबाद में और ये मतलब इस सीजन में पहली बार RCB ऑल आउट हुई।
जी हाँ बिल्कुल, और RCB का अगर कोलैप्स एक बार नहीं दो दो बार कोलैप्स हो जाए एक ही पारी के अंदर, एक बार आप 17 रन में 4 विकेट खो देते हैं, अन्य मौके पर आप 29 रन में 4 विकेट खो देते हैं, तो फिर तो भगवान ही मालिक है। फिर तो आपके भुवनेश्वर कुमार कितनी भी अच्छी बॉलिंग कर लें, हेजलवुड कितना ही अच्छा साथ दे दें, वो रन जो थे जो स्कोरबोर्ड पे जो रन थे वो बहुत ही कम थे। पिच पर गति थी, उछाल था, लेकिन शॉट सिलेक्शन जो है RCB के बल्लेबाजों का बहुत ही खराब था। अब आप देखें कि तो विराट, पड्डिकल, रजत पाटीदार, कृणाल पांड्या, ये सब प्लेयर जितने भी आउट हुए ना ये लेग स्टंप पर या मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर जो गेंद पड़ रही थी उस पर आउट हुए, यानी ये आउट होने वाली बॉल पर ही आउट नहीं हुए हैं। वहीं गुजरात टाइटन्स की बात करें तो उनका परफेक्ट, मैं कहूंगा, टीम वर्क देखने को मिला, चाहे वो शुभमन गिल हो, बटलर हो, होल्डर हो, राशिद खान हो, अरशद खान हो, रबाडा हो, सबने बहुत अच्छा साथ दिया। लेकिन वहीं भुवनेश्वर कुमार अकेले पड़ गए क्योंकि साई सुदर्शन, गिल और बटलर के अच्छे विकेट चटकाने के बावजूद वो वैसा टीम के लिए योगदान नहीं दे पाए, यानी वो मैच को के नतीजे को पलट नहीं पाए।
जी, उधर भारत ने किर्गिस्तान में चल रहे U18 आइस हॉकी एशिया कप में मकाऊ को 8-1 से हरा दिया है। भारत ने शुरू में गोल करके जो दमदार शुरुआत की और तीनों पीरियड में अपने खेल में अपना नियंत्रण बनाए रखा और सबसे अच्छी बात जो कप्तान ने लगातार 4 गोल सुनिश्चित किए जिसके कारण जीत भी सुनिश्चित हो सकी।
कप्तान गुरतेज सिंह भाटी, वाकई उनको सलाम करने का मन करता है। 4 गोल अगर आप करते हैं इस खेल में तो उसके मायने कुछ अलग हैं। और वैसे भी ये खेल जो है लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश तक ही सीमित है और जब से भारत की U18 महिला टीम ने एशिया कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है तब से इस खेल को बहुत ही गंभीरता से लिया जाने लगा है।
जी, उधर झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले 7 साल के नन्हे तैराक इशांक सिंह ने समुद्री लहरों को मात दिया, नया इतिहास रचा। और इनके जो उपलब्धि है, इसे देख करके ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार
कभी नहीं होती। बिल्कुल तो, सही आपने एग्जाम्पल दिया है। 29 किलोमीटर की लंबी रेस और वो भी पार्क स्ट्रीट की, इंडिया से श्रीलंका के बीच में तमिलनाडु से शुरुआत होती है, 9 घंटे 50 मिनट में इन्होंने पार किया, क्योंकि ये बहुत अच्छा, इससे पहले इतने कम समय में और इतनी कम उम्र के किसी खिलाड़ी ने ये काम अभी तक नहीं किया था। क्योंकि जय जसवंत थे तमिलनाडु के, जिनके नाम ये रिकॉर्ड था, पिछला रिकॉर्ड, तो मैं तो कहूँगा ये एक्सेप्शनल टैलेंट है और इस टैलेंट को सहेज कर रखना चाहिए और इनको बहुत ही आधुनिकतम किस्म की ट्रेनिंग देनी चाहिए। मैं तो कहूंगा इनको अगर आप बैंगलोर भेज दें जहां स्विमिंग का अच्छा खासा माहौल है तो शायद इनकी कला में और 4 चांद लग जाएंगे।
बिल्कुल, और इससे और भी बच्चे जरूर ये प्रेरित होंगे, क्योंकि महज 7 साल का बच्चा कक्षा 3 में पढ़ने वाला, इसने इतनी बड़ी रिकॉर्ड बनाया है, इसने इतना बड़ा विश्व रिकॉर्ड।
कक्षा 3 के छात्र इशांक ने श्रीलंका
ओडिशा में कल से पहले इंडियन इंडोर ओपन एथलेटिक्स और पोल वॉल्ट प्रतियोगिता शुरू होगी और कलिंगा स्टेडियम में 2 दिन तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक देव कुमार मीणा और तमिलनाडु की बर्निका एलंगोवन आकर्षण का केंद्र होंगे, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों ने भी पिछले मैचेस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।
बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देव कुमार मीणा जो है, मेरा तो नजर ये रहेगी कि मध्य प्रदेश के जो देवास का जो ये खिलाड़ी है, एक होनहार टैलेंट है, अपना पर्सनल बेस्ट जो इनका 5.40 का है उसको ये जरूर पार करे, जो इन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में स्थापित किया था। ये 400 मीटर की रेस से फील्ड इवेंट में आए हैं, ट्रैक से फील्ड में आना और इतना अच्छा प्रदर्शन करना, उन पर जरूर नजरें रहेंगी। इसी तरह से वर्णिका जो हैं वो 29 साल की हैं, एलगोवन पोल वॉल्ट में हैं और इंडोर एथलेटिक्स में भी इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, नेशनल रिकॉर्ड है इनके नाम 4.22 मीटर का, और 4.21 मीटर का जो पिछला रिकॉर्ड था इनका वो इन्होंने ध्वस्त किया था। तो अब ये दोनों टैलेंट्स पर निश्चित तौर पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं।
जी, अब बात करते हैं भारत की अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम की, जिसने 21 साल के बाद इस टूर्नामेंट में वापसी की है, AFC अंडर-17 एशियन कप में, और कल अपने अभियान की शुरुआत करेगी। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन के सूझो में।
देखिए, लंबे समय बाद जब आप वापसी करते हैं इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता में तो उसके मायने काफी अलग होते हैं, और आपने बैंगलोर में अच्छी ट्रेनिंग की है और लंबा कैंप लगाया आपने, और उसके बाद हेड कोच जो पामिला कॉन्टी हैं वो, उनको बहुत उम्मीदें हैं इस टीम के साथ, और देखा जाए तो क्रमवत तरीके से इन्होंने बहुत प्रभावित किया। फरवरी में सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप हुई, वहाँ इन्होंने शिरकत की, मार्च में म्यांमार में ये खेले और अप्रैल में रूस के साथ वहाँ कई फ्रेंडली मैच खेलने का इन्हें तजुर्बा मिला। ये सब तजुर्बा जो है, हालिया तजुर्बा, इनके यहाँ बहुत काम आने वाला है।
जी बिल्कुल, और हम बता दें अपने श्रोताओं को कि प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सीधे क्वार्टर फाइनल में जाएगी, तीनों ग्रुप में तीसरे स्थान पर रहने वाली 2 सर्वश्रेष्ठ टीम भी क्वार्टर फाइनल का हिस्सा बनेगी, और क्वार्टर फाइनल में जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली 4 टीम सीधे फीफा अंडर महिला विश्व कप मोरक्को 2026 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी, और उम्मीद है हमारी टीम इसमें जरूर शामिल होंगी। अब चलते चलते कुछ और खबरें दे देते हैं कि दूसरी रग्बी प्रीमियर लीग RPL की घोषणा हो गई है। यह प्रतियोगिता 16 से 28 जून तक हैदराबाद के गाचीबावली स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। GMR स्पोर्ट्स रग्बी इंडिया के साथ मिलकर प्रतियोगिता का आयोजन करेगा, और पिछले साल इसका आयोजन मुंबई में हुआ था और उस समय रग्बी 7 प्रारूप में आयोजित की गई थी, इस बार भी इसी प्रारूप में खेली जाएगी। वहीं कजाकिस्तान के अल्माटी में होने वाले इस साल के दूसरे ISSF शॉटगन विश्व कप में भारत की 12 सदस्यीय निशानेबाजी टीम भाग लेगी। भारतीय टीम कल आयोजन स्थल पर पहुंचेगी और 10 दिन तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में 42 देशों के 284 खिलाड़ी भाग लेंगे। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो मनोज जी आप हमारे स्टूडियो में आए और खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद
श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।